हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरमान को ज़ोया के अमेरिका में होने का पता चलते ही एक उम्मीद जागी थी। इसकी एक और वजह थी, अरमान का 40% व्यापार अमेरिका में ही था और वहाँ के कुछ अमीर लोग उसके मित्र और व्यापारिक भागीदार भी थे। अरमान एक साथ स्थान पर पहुंचा था क्योंकि उसने उस आदमी को भी वहीं बुलाया था। कुछ ही देर बाद तेजा एक आदमी को आंखों पर पट्टी बांधकर ले आया। उस आदमी को देखते ही अरमान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। अरमान ने तेजा से उस आदमी की आंखों की पट्टी हटाने का इशारा किया और तेजा ने पट्टी हटा दी। वो आदमी अकरम का ही एक खास आदमी था जो अकरम के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहता था, पर उसकी बदकिस्मती थी कि वो तेजा से जा टकराया था। एक बार तेजा के हाथों में कोई चढ़ जाए तो उससे सच उगलवाना बेहद आसान था। अरमान को देखते ही वो आदमी कांपने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अकरम के बारे में बताकर बस इतना और बता दो कि वो अमेरिका में कहाँ रह रहा है। अगर तुमने मुझे उसका पूरा पता दे दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चलो अब बोलो जल्दी, अरमान ने उसे लालच देते हुए कहा। अरमान की बात सुनकर वो आदमी रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब मुझे जितना पता था वो मैंने इस भाई साहब को बता दिया था। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं नहीं जानता अकरम साहब मैडम के साथ कहाँ गए हैं। उन्होंने तो मुझे मलेशिया की टिकट बुक करने को कहा था उनके और मैडम के नाम से। मैंने वही किया था और उनकी टिकट पर उनके नाम वाले अलग अलग 3 लोगों को मैंने मलेशिया भेजा था, लेकिन वे मलेशिया नहीं गए थे। तब तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वे लोग अमेरिका में हैं? वो आदमी बोला, वो साहब ने मुझे नहीं बताया था। वे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि बाकी सब वे अमेरिका पहुँच कर करेंगे। बस मैंने यही सुना था और मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। आप कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ मत करो। मैं नहीं जानता वे कहाँ हैं, वो आदमी रोते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अरमान हंसने लगा। हंसते हंसते उसने एक बंदूक निकाली और उस आदमी के पेट में लगातार 3-4 गोलियां मार दीं। उसके आदमी के मरते ही अरमान हंसता हंसता एकदम चुप हो गया और तेजा से बोला, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो और अरमान ठाकुर के अमेरिका जाने की तैयारी करो। अब अपनी बेगम को लेने ये बादशाह खुद जाएगा। अरमान ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा और ठाकुर मेंशन की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर राजवीर मेहर से माफ़ी मांगने के बाद बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था। अब उसे बस अपनी नौकरी वापस पाना था। कुछ सोचकर उसने अपने अंकल शमशेर सिंह को कॉल किया और बोला, अंकल प्लीज़ मेरा सस्पेंशन रोक दे और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने दे। आप तो जानते हैं बचपन से लेकर आज तक मेरी जॉब ही मेरे लिए सब कुछ रही है और उस लड़की अनुराधा ने मुझे कुछ खिला दिया था जिसके बाद उसने मुझे खुद पर मजबूर किया था। बहुत जल्द मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। प्लीज़ अंकल आप मुझे ड्यूटी पर वापस ले लें। शमशेर सिंह गुस्से से बोले, राजवीर ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तुझे पता है उस लड़की ने फ़ोन पर धमकी दी थी मुझे कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे मैं मुंह के बल जा गिरूंगा। ये बात तो पक्की है कि वो किसी न किसी बदले के तहत ये सब कर रही है। और अगर तुम जॉब पर वापस आना चाहते हो तो ये पता लगाओ कि उस लड़की की आखिर दुश्मनी क्या है मुझसे और क्यों वो मुझे दर्द देने के लिए मेरे देश को टारगेट कर रही है। अब तुम सोच लो, अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी पूरी डिटेल्स मुझे लाकर दे दी तो मैं तुम्हारे सस्पेंशन के बारे में कुछ सोचूंगा ज़रूर। ठीक है अंकल, मैं बहुत जल्द उसकी पूरी डिटेल्स निकालकर आपको देता हूँ, राजवीर ने कहा और फ़ोन रख दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अभी तक अनुराधा के बारे में कुछ नहीं जान पाया था। एक बार फिर उसे अनुराधा याद आ गई। वो सोचने लगा, मैंने कितनी बेरहमी से उसके साथ सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी वो किस तरह चट्टान की भांति मेरे सामने खड़ी थी। कुछ तो बात है उस औरत में। राजवीर सोच ही रहा था कि तभी मेहर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ गई। राजवीर लपक कर मेहर के पास गया और उसके हाथ से कॉफ़ी का मग लेकर साइड में रख दिया। तुम क्यों लेकर आई ये कॉफ़ी? नौकर कहाँ गए घर के? मेहर ने कहा, तो क्या हुआ? आप मेरे शौहर हैं और अपने शौहर का हर छोटा बड़ा काम बीवी को ही करना चाहिए। ओह आई सी, राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और बोला, तो बीवी के और क्या क्या फ़र्ज होते हैं और बीवी को और क्या क्या करना चाहिए? ऐसा कहकर वो उसके गले पर किस करने लगा। मेहर उसे मना करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। मेहर से ढील मिलते ही वो उस पर टूट पड़ा। मेहर उसके नीचे लेटी हुई आंसू बहा रही थी, क्योंकि आज भी राजवीर के स्पर्श में उसे प्यार कहीं भी नजर नहीं आया था। अमेरिका। अक्रम ने केवल आधे घंटे के अंदर अंदर एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया था। अक्रम एक पैसे वाला आदमी था, सो उसके लिए आधे घंटे में फ्लैट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं था। पैसा बड़े से बड़ा काम आसान कर देता है। जोया और रिया ने अपना जरूरी सामान पैक कर लिया था और अक्रम उन दोनों को लेकर रात में ही अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। अक्रम जोया को लेकर इस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर वॉशिंगटन में ले गया था। अक्रम ने जिस VIP इलाके में फ्लैट खरीदा था, वहाँ की सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त थी। कोई भी बिना परमिशन वहाँ अंदर नहीं आ सकता था। अक्रम यहाँ पहुंचकर काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। अक्रम ने जोया और रिया को सख्त निर्देश दे दिए थे कि वे दोनों वहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर न निकलें। अगर उन्हें किसी भी सामान की जरूरत हो तो वे अक्रम को बताएं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें। बाहर बिल्कुल भी न निकलें। और वैसे भी जब तक जोया मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तब तक उसका छुपा रहना ही सही था। अक्रम की बात वे दोनों अच्छी तरह समझ चुकी थीं और वैसे भी अक्रम जो भी कह रहा था उनकी भलाई के लिए ही कह रहा था। जोया और रिया ने जो शॉपिंग की थी वो सब भी वे साथ ले आए थे। सब कुछ सेट करने में उन्हें रात के 3 बज चुके थे। अक्रम और रिया ने जोया को उसके कमरे में भेज किया था आराम करने के लिए। जोया को अपना कमरा काफी पसंद आया था। उसका कमरा एकदम खुला खुला सा था और उसके कमरे की खिड़की उस अपार्टमेंट के पार्क में खुलती थी। उसकी खिड़की के थ्रू आराम से पूरा पार्क देखा जा सकता था। जोया ने सोचा, कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है, इस बिल्डिंग का तो पार्क ही काफी है घूमने के लिए। अक्रम और रिया एक ही बेडरूम में चले गए थे, क्योंकि वे लोग तन और मन से कब का एक हो चुके थे। बस अब केवल शादी का ठप्पा लगना बाकी था और वैसे भी 3 दिन बाद वे शादी भी करने वाले थे। वे तीनों काफी ज्यादा थके हुए थे तो वे सब के सब गहरी नींद में सो चुके थे। इस गहरी काली रात में करीब करीब सभी सोए हुए थे, लेकिन दो आंखें थीं जिनकी आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी। वे और कोई नहीं बल्कि अबीर राठौर था। जब से वो जोया से मिला था, उसकी नीली आंखों को भुला नहीं पाया था। और जब जब जोया उसका मुकाबला करती थी, वो उस पल को काफी ज्यादा एंजॉय करता था। अबीर रात के इस पहर अपने जख्मों को छू रहा था। अबीर हर बार अपने आप को दर्द देता था। उसे ऐसा लग रहा होता मानो जोया अभी भी उसे काट रही हो। वो जोया का दिया जख्म बार बार कुरेद देता था। रात का आखिरी पहर चल रहा था। अबीर जोया को बड़ी ही शिद्दत से याद कर रहा था।
उसने सोच लिया था, अबीर राठौड़ को तड़पाने की सजा तो जोया को जरूर मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पास आकर कुछ सोचकर अबीर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बस ये आखिरी रात है जो तुम्हारे बिना है। अब मेरी हर रात दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होंगे। बहुत जल्द हम एक होंगे, सो जस्ट वेट एंड वॉच माई क्वीन। अबीर ये सब सोचता हुआ सो चुका था। फिर उसने अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक कदम उठाया था। उसने अपने एक आदमी के हाथ अगली सुबह एक बड़ा सा बुके जोया के पते पर भेज दिया था। लेकिन जोया तो वहां थी ही नहीं, वो तो कब की किसी और जगह जा चुकी थी। अबीर ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्यार के इजहार वाले दिन ही उसका महबूब उससे दूर जा चुका होगा। अबीर का आदमी जोया के घर से बुके लेकर वापस आ गया था। अबीर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो आदमी अबीर के पास पहुंचा, अबीर ने कहा, क्या हुआ, क्या कहा उसने? वो आदमी सिर झुकाए खड़ा रहा। अबीर राठौड़ को सच बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अबीर ने इस बार कड़ी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने पूछा, क्या कहा उसने? उस आदमी को पता था कि अगर वो अब भी नहीं बोला तो पक्का आज उसका बॉस उसकी जान ले लेगा। अबीर के इस तरह पूछने पर उसने बोला, एक्चुअली बॉस, वो मैडम अब वहां नहीं है। उस आदमी ने हकलाते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। इतना कहते ही अबीर ने उसके माथे पर बंदूक लगा दी और बोला, ठीक तरीके से बताओ हुआ क्या है, वरना 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। अबीर के इस तरह धमकी देते ही उस आदमी ने अपनी पैंट गीली कर दी थी और वो रोने लगा था। फिर वो रोते रोते बोला था कि बॉस, वो मैडम और उनका परिवार कल रात ही वो फ्लैट खाली करके कहीं चले गए हैं। अबीर ने जैसे ही ये सुना, उसके दिल पर एक जोरदार धक्का सा लगा था। उसे तो लगा था कि जोया बुके में छिपा उसके प्यार का इजहार पढ़ लेगी और फिर वो आज ही उससे सगाई करेगा और कल शादी। अभी राठौर ने देर करना तो कभी सीखा ही नहीं था। अभी तक लड़की ने हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया था और अभी राठौर उससे एक ही दिन में शादी के सपने भी बुनने लगा था।